कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसी किताब पढ़ रहा है जहां हर पन्ने पर सदियां बीत रही हैं, ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, पूरी मानव जाति का पतन हो रहा है।
हाँ, और एक ग्लोबल जल प्रलय आ रही है, सभ्यताएं बन और बिगड़ रही हैं।
बिल्कुल, मतलब उत्पत्ति यानी जेनेसिस के पहले 11 अध्याय एकदम ऐसे ही हैं। ये पूरी मानव जाति का एक यूनिवर्सल इतिहास है। सृष्टि के निर्माण के लिए सिर्फ 2 अध्याय और आदम के बगीचे में उस भयंकर पतन के लिए सिर्फ 1 अध्याय।
हाँ, कहानी मानो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, लेकिन फिर
अचानक ब्रेक लग जाते हैं।
एकदम सही।
अध्याय 11 के अंत में कहानी की स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाती है और अगले 14 अध्याय पूरी दुनिया को छोड़कर केवल एक इंसान और उसके टेंट पर आकर रुक जाते हैं। ऐसा क्यों?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन ठीक यही है। डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज की शिक्षाओं के आधार पर उत्पत्ति 11 और 12 के उस पॉइंट का गहरा विश्लेषण करना जहां इब्राहिम की बुलाहट होती है। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आखिर कहानी में इतना बड़ा फोकस शिफ्ट क्यों हुआ?
देखिए, ये सच में पूरी प्राचीन साहित्यिक दुनिया के सबसे नाटकीय बदलावों में से एक है। जब कोई कहानी इतनी तेजी से एक व्यक्ति पर आकर रुकती है ना, तो
वो कुछ बड़ा इशारा कर रही होती है, राइट?
बिल्कुल, एक बहुत स्पष्ट संकेत। उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों को अगर हम ध्यान से देखें, तो वहां आदन के बगीचे में जो पतन हुआ, उससे दुनिया में एक पाप की समस्या आ गई।
हाँ, रिश्ते टूट गए, भाई ने भाई का खून किया।
सही बात है, मनफ्ता बिखर गए और टावर ऑफ बेल ऑफ द गाते आते सब कुछ एक अंधकारमय दिशा में जा रहा था। तो जब कहानी का फोकस इब्राहिम पर शिफ्ट होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि
अब ईश्वर उस टूटेपन के उपचार पर ध्यान दे रहे हैं।
हाँ, ठीक उस समस्या के समाधान पर सीधा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अध्याय 1 से 11 तक हम बीमारी का फैलना देखते हैं और अध्याय 12 से हम उस बीमारी के इलाज की शुरुआत देखते हैं।
लेकिन अगर ये इलाज की शुरुआत है और इब्राहिम इस समाधान का केंद्र है, तो जिस तरह से ये कहानी इब्राहिम पर आती है वो थोड़ा अजीब है।
अजीब कैसे?
मतलब उत्पत्ति 11:27 की शुरुआत इस तरह नहीं होती कि ये इब्राहिम की वंशावली है, बल्कि स्पष्ट रूप से लिखा है ये 13 की वंशावली है। इब्राहिम तो 13 के बेटे थे ना?
हाँ, बिल्कुल।
तो अगर फोकस इब्राहिम पर शिफ्ट होना है, तो कहानी उनके पिता के नाम पर क्यों अटक गई?
थ्यू समझाते हैं कि इस वंशावली को एक कब्जे या हिंज के रूप में देखा जाना चाहिए।
एक कब्जा जैसे दरवाजे का होता है।
हाँ, जैसे एक दरवाजे का कब्जा दो अलग अलग कमरों को जोड़ता है। 13 का नाम शेम की पिछली वंशावली के एक अनुगूंज है। यह उस इतिहास को दर्शाता है जो पीछे छूट रहा है।
अच्छा, और आगे का दरवाजा खुल रहा है।
बिल्कुल, यह उस भविष्य की ओर भी इशारा कर रहा है जो 13 के परिवार, विशेषकर इब्राहिम के माध्यम से आने वाला है। यह केवल एक लिस्ट नहीं है, यह अतीत के ग्लोबल इतिहास और भविष्य के उद्धार के इतिहास के बीच का एक पुल है।
ये कब्जे वाली बात काफी दिलचस्प है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मूवी कैमरा पृथ्वी के एक वाइड एंगल शॉट से शुरू होता है, जहां पूरी पृथ्वी, सभी महाद्वीप और राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं, और फिर
वो जूम इन करता है।
हाँ, सीधे मेसोपोटामिया के एक परिवार के लिविंग रूम में घुस जाता है, जहां हम 13 और उसके बेटों को बैठे हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जिसने मेरा दिमाग सच में घुमा दिया।
कौन से तथ्य?
हम अक्सर इब्राहिम को पहले हिब्रू के रूप में सोचते हैं, जैसे कि ये उनकी जन्मजात पहचान हो, लेकिन असल में वो तो जन्म से हिब्रू थे ही नहीं।
अरे बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इब्राहिम जन्म से हिब्रू नहीं थे और ना ही उनके पिता हिब्रू थे।
तो वो थे कहाँ के?
वो मेसोपोटामिया के रहने वाले थे, विशेष रूप से कसदियों के उर नामक शहर से, जिसे उर ऑफ द चैल्डियंस कहते हैं। और देखिए, उर कोई छोटा मोटा धूल भरा गाँव नहीं था।
हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि वो किसी टेंट वाले गांव से आए थे।
नहीं नहीं, उस समय का एक बेहद उन्नत समृद्ध सुमेरियन महानगर था। वहाँ बड़े बड़े ज़िगुराट्स थे, एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थी, और वो चंद्र देवता नन्ना की पूजा का केंद्र था।
और डॉक्टर मैथ्यूज ने यहोशू 24:2 का हवाला भी दिया है, राइट?
हाँ, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि 13 और उसका परिवार अन्य देवताओं की पूजा करते थे। इब्राहिम इसी बहुदेववादी संस्कृति में गहराई से रचे बसे थे।
तो अगर इब्राहिम एक इतने विकसित और स्थापित शहर का हिस्सा थे, जहां उनकी एक पक्की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, तो ये सब छोड़कर एक बंजारे का जीवन अपनाना, ये तो काफी बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि हिब्रू होना कोई नस्लीय चीज नहीं थी।
यही इसका सबसे गहरा पहलू है। हिब्रू शब्द का मूल अर्थ ही एक ऐसे व्यक्ति से है जो यात्री है, जो प्रवासी है, या जिसे सीमाओं को पार करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है।
अच्छा, मतलब उन्होंने ये पहचान चुनी थी।
बिल्कुल, इब्राहिम हिब्रू पैदा नहीं हुए, वो अपने निर्णयों से हिब्रू बने। जब उन्होंने उस उन्नत सभ्यता को, अपनी सुरक्षा को और अपने देवताओं को छोड़कर एक अनजान ईश्वर की आवाज पर भौगोलिक और आध्यात्मिक सीमाएं पार की,
तो वो एक परदेसी या यात्री कहलाए।
हाँ, उनका ये प्रवासी होना, ये सीमा पार करना ही उनकी और बाद में उनके वंशजों की असली पहचान बन गया।
तो एक मेसोपोटामिया का निवासी जो अपना सुरक्षित जीवन छोड़कर एक प्रवासी बन जाता है, ये हमें उस पॉइंट पर लाता है जहां उन्हें कुछ वादे दिए जाते हैं। और यहीं पर मुझे डॉक्टर मैथ्यूज की एक बात से थोड़ी आपत्ति महसूस होती है।
किस बात पर?
देखिए, वो कहते हैं कि तोरा का एक बहुत ही व्यापक विषय आंशिक रूप से पूरे हुए वादों की कहानी है, मतलब पार्शली फुलफिल्ड प्रॉमिसेस। अब रुकिए, अगर ईश्वर इब्राहिम से वादे करते हैं और वो वादे उनके जीते जी पूरी तरह पूरे हो ही नहीं होते,
तो क्या ये धोखा है?
हाँ, क्या इसका मतलब ये नहीं कि इब्राहिम के साथ धोखा हुआ? एक आम इंसान तो इसे ईश्वर की असफलता या कोई छलावा ही मानेगा ना, फिर इसे एक महान थीम क्यों माना जा रहा है?
ये एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और सच कहूं तो पहली नजर में ये एक विफलता ही लगती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ईश्वर यहाँ क्या स्थापित कर रहे हैं। ईश्वर केवल एक ट्रांजैक्शन या लेन देन नहीं कर रहे थे,
वो एक रिश्ता बना रहे थे।
ठीक कहा, वादों का आंशिक रूप से पूरा होना विफलता नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया थी। देखिए, इन वादों को हम मुख्य रूप से तीन स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला जमीन, दूसरा संतान या आबादी, और तीसरा आशीर्वाद या संबंध।
ठीक है,
अब इब्राहिम को जमीन का वादा मिला, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कनान में केवल एक गुफा खरीदी।
हाँ, ताकि अपनी पत्नी सारा को दफना सकें।
चिक पूर्ति इसीलिए जरूरी थी क्योंकि ये इब्राहिम को वर्तमान के भौतिक सुखों से हटाकर भविष्य की एक शाश्वत आशा की ओर देखकर जीना सिखा रही थी।
मतलब अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता
तो ये एक वेंडिंग मशीन जैसा रिश्ता बन जाता। सिक्के डालो और आशीर्वाद निकालो। लेकिन ईश्वर जो संबंध या कवनेंट बना रहे थे, वो प्राचीन दुनिया की संधियों जैसी नहीं थी।
हाँ, उत्पत्ति 15 और 17 में हम देखते हैं कि ये व्यवस्था केवल नियमों पर आधारित नहीं थी।
सही कहा, ये ईश्वर के चुनिंदा प्रेम या इलेक्टिव लव और उनकी भलाई पर आधारित थी। ये एक तरफा कृपा थी। ईश्वर ने कहा, मैं ये करूंगा। इब्राहिम को बस उस पर भरोसा करना था, भले उस भरोसे को जमीनी हकीकत बनने में पीढ़ियां लग जाएं।
हाँ, अगर हम इन तीन स्तंभों पर ध्यान दें, जमीन, संतान और आशीर्वाद, तो एक और बात समझ में आती है। ये वादे बिल्कुल भी नए नहीं हैं, है ना? क्या ये वही ब्लूप्रिंट नहीं है जो मानव जाति के पास सबसे पहले था?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें एहसास होगा कि ये ठीक वही तीन स्तंभ हैं जो सृष्टि की शुरुआत में अदन के बागीचे में इंसान को दिए गए थे।
एक सेकंड, वाकई?
हाँ, अध्याय एक में ईश्वर इंसान को आशीर्वाद देते हैं और एक आध्यात्मिक संबंध बनाते हैं। वो उन्हें फलने फूलने और संतान उत्पन्न करने को कहते हैं और उन्हें एक जमीन, एक क्षेत्र दिया जाता है, अदन का बागीचा।
लेकिन पतन के कारण इंसानों ने ये तीनों चीजें खो दी।
बिल्कुल, और इब्राहिम के साथ ईश्वर मूल रूप से उसी आदान के ब्लूप्रिंट को फिर से स्थापित कर रहे हैं। ये एक नया आरंभ है।
तो ये नया आरंभ शुरू होता है एक लंबी यात्रा से, ऊर से हरान और फिर हरान से कनान तक। देखने में ये महज एक माइग्रेशन या स्थान परिवर्तन लगता है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि ये केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी।
वैसे यहाँ एक भौगोलिक पहेली भी है जिसे सुलझाना जरूरी है।
हाँ, ऊर और हरान वाली पहेली।
बिल्कुल, कुछ सोर्सेज में लिखा है कि उन्हें उर से बुलाया गया और उत्पत्ति 12 की शुरुआत हरान से होती दिखती है। ये कन्फ्यूजन क्यों है?
इस पर अक्सर विद्वानों के बीच चर्चा होती है। देखिए, उत्पत्ति 15:7 और नहमिया 9 कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कसदियों के उर से निकाला, लेकिन उत्पत्ति 12 पढ़कर ऐसा लगता है जैसे बुलाहट हरान में हुई।
हाँ, यही तो अजीब लगता है। इस पहेली का समाधान हमें नए नियम में मिलता है, प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स अध्याय 7 में। जब स्टीफन अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं तो वो इन दोनों घटनाओं को एक साथ टेलीस्कोप कर देते हैं।
टेलीस्कोप करना मतलब एक ही दृश्य में मिला देते हैं।
बिल्कुल, वो बताते हैं कि महिमा के परमेश्वर ने हमारे पिता इब्राहिम को, जब वो मेसोपोटामिया में था और हैरान में नहीं बसा था, दर्शन दिया। इसका मतलब है कि पुलाहट ऊर में ही शुरू हो गई थी और हैरान उस लंबी यात्रा का एक पड़ाव था। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी
और ये यात्रा केवल नक्शे पर तय की गई दूरी नहीं थी।
डॉक्टर मैथ्यूज इसे इब्राहिम के विश्वास की ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर ये एक ट्रेनिंग स्कूल था तो इब्राहिम ने शुरुआत में इसमें काफी खराब परफॉर्मेंस दिया था।
हाँ, उनकी शुरुआत काफी डगमगाती हुई थी। कनान पहुंचते ही हाल पड़ता है, वो मिस्र भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी सारा के बारे में झूठ बोलते हैं कि वो उनकी बहन है। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बनना है, वो शुरुआत में ही इतनी बड़ी नैतिक विफलता दिखा रहा है।
और पता है, यही बात इस कथा को इतना प्रमाणिक बनाती है। बाइबल अपने नायकों की कमियों को नहीं छिपाती। इब्राहिम का विश्वास एक दिन में मैच्योर नहीं हुआ था। मिस्र में उनका झूठ बोलना उनके डर को दर्शाता है, उनका अपनी ही समझ पर निर्भर होना दर्शाता है।
लेकिन उस विफलता में भी हम देखते हैं कि ईश्वर अपने वादे के प्रति वफादार रहते हैं।
हाँ, और सारा की रक्षा करते हैं। इब्राहिम को इस ट्रेनिंग स्कूल में ये सीखना था कि ईश्वर की योजनाएं इंसानी कमजोरियों या हमारे जुगाड़ पर निर्भर नहीं है। बाद में जब वो हजीरा के माध्यम से वारिस पाने की कोशिश करते हैं, वो भी उनके विश्वास की कमी का ही एक उदाहरण था।
मतलब ये स्कूल थ्योरी का नहीं बल्कि कड़े प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हिब्रियों 11 में विश्वास की जो डेफिनेशन दी गई है उसके आधार पर सोस में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है।
एयरप्लेन वाला उदाहरण?
हाँ, आमतौर पर हम सोचते हैं कि विश्वास का मतलब बस आंख बंद करके किसी चीज को मान लेना है, एक तरह का अंधविश्वास। लेकिन इसे एक हवाई जहाज के सफर की तरह समझें। जब कोई व्यक्ति फ्लाइट में बैठता है तो क्या वो सिर्फ अंधविश्वास के सहारे बैठता है?
बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति ये सोचकर प्लेन में कदम नहीं रखता कि शायद ये मशीन आज उड़ जाए और गिरे नहीं। उस निर्णय के पीछे कोई अंधापन नहीं होता।
ठीक कहा, उसके पीछे एक ज्ञान होता है। हमें पता है कि एरोडायनामिक्स के नियम काम करते हैं। हमारे पास अनुभव होता है, या तो हमारा अपना या दूसरों का, कि हर दिन हजारों जहाज सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
विश्वास पैदा होता है।
बिल्कुल, जिससे हम जहाज के अंदर कदम रखने का एक्शन ले पाते हैं।
यही वो मैकेनिज्म है जिससे इब्राहिम का विश्वास काम कर रहा था। इब्राहिम ने संवाद, प्रार्थना और अपने जीवन की असफलताओं और सफलताओं के बीच ईश्वर को काम करते देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे मिस्र में ईश्वर ने उन्हें बचाया
और कैसे राजाओं के खिलाफ युद्ध में जीत दिलाई।
सही बात है, ये सब उनका ज्ञान और अनुभव था। उनका विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं था। यह एक ऐसे पायलट के साथ लंबी यात्राओं का परिणाम था जिसने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी परेशान करने वाली हो जाती है।
अध्याय 22 की वजह से।
हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल का फाइनल टेस्ट अध्याय 22 में आता है, इसहाक का बलिदान। अब जरा उस मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना कीजिए। सारा का दशकों तक बांझ है ना, अपने भतीजे लूट को एक समय वारिस मान लेना और फिर उसका अलग हो जाना, हजीरा वाला पूरा संकट, और फिर बुढ़ापे में जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी तब उन्हें इसहाक मिलता है।
इसहाक केवल एक बेटा नहीं था।
वही तो, वो उनके पूरे भविष्य और ईश्वर के सारे वादों का जीता जागता प्रतीक था। और फिर अचानक ईश्वर कहते हैं उसे वेदी पर चढ़ा दो। ये तो बहुत ही क्रूर लगता है, क्यों कोई ईश्वर ऐसा मांगेगा?
देखिए, ये उत्पत्ति की पूरी किताब के सबसे तनावपूर्ण और भावनात्मक क्षणों में से एक है। अध्याय 12 को याद करें, वहां ईश्वर ने इब्राहिम को अपना अतीत, अपना देश, अपनी सुरक्षा छोड़ने को कहा था।
हाँ, वो उनका पास्ट था।
और अब अध्याय 22 में वो उनका भविष्य, उनका वादों का प्रतीक छोड़ने को कह रहे हैं। ये उनके जीवन के दो बुकेंड्स हैं। ईश्वर ऐसा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ये परखना चाहते थे कि इब्राहिम की निष्ठा का अंतिम केंद्र क्या है।
क्या इब्राहिम वादों से ज्यादा प्यार करते हैं या वादे करने वाले से?
बिल्कुल यही सवाल। क्या इब्राहिम का ईश्वर से प्रेम केवल उन लाभों के लिए था जो ईश्वर दे सकते थे? ये विश्वास की चरम परीक्षा थी। और क्योंकि इब्राहिम ने उस हवाई जहाज वाली ट्रेनिंग से गुजर कर ये जान लिया था कि ईश्वर का चरित्र पूरी तरह से भरोसेमंद है, वो इसहाक को वेदी पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े।
मतलब अगर ईश्वर वो सब वापस ले लें जो उन्होंने खुद दिया था तो भी उनका विश्वास बना रहेगा।
हाँ, हिब्रूज की किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। इब्राहिम को ये विश्वास हो गया था कि चूंकि ईश्वर ने इसहाक के माध्यम से वंश चलाने का वादा किया है, इसलिए अगर वो इसहाक को मार भी दें तो ईश्वर उसे मरे हुओं में से वापस ला सकते हैं।
अरे वाह,
ये कोई आम बात नहीं है। ये उस पायलट पर असाधारण स्तर का भरोसा था।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने उस वरदान को मुट्ठी में भींच कर नहीं रखा, बल्कि उसे खुले हाथों से ईश्वर को सौंपने को तैयार हो गए। अब अगर हम उत्पत्ति 12 की उस मूल वादे पर वापस लौटें, जो इब्राहिम को उनके सफर की शुरुआत में दिया गया था, वहां एक बहुत ही गहरा साहित्यिक रहस्य छिपा है
जो टूटेपन से जुड़ता है।
हाँ, जो सीधे तौर पर दुनिया के उस टूटेपन से जुड़ता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी।
यहाँ जब बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उत्पत्ति 12 की उन 3 शुरुआती आयतों का भाषाई ढांचा कैसा है। डॉक्टर मैथ्यूज बताते हैं कि उन चंद वाक्यों में आशीष या ब्लेस्ड शब्द के विभिन्न रूपों का ठीक 5 बार उपयोग किया गया है।
5 बार?
हाँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा आदि। हिब्रू साहित्य में ये 5 बार का उपयोग कोई संयोग नहीं है, ये एक जानबूझकर बनाई गई काव्यागत समरूपता यानी पोएटिक सिमेट्री।
ठीक है, पर 5 बार आशीर्वाद, ये संख्या इतनी विशिष्ट क्यों है? इन सब में से ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचनी चाहिए?
इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इन सब में से जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उत्पत्ति के अध्याय 1 से लेकर 11 तक, यानी इब्राहिम की कहानी शुरू होने से ठीक पहले तक, परमेश्वर द्वारा ठीक 5 शाप दिए गए थे।
एक सेकंड रुकिए, 5 शाप?
हाँ, पहला शाप अध्याय 3 में सीधे सांप पर था, दूसरा शाप अध्याय 3 में ही जमीन पर था जिसके कारण काटे और ऊंट कटारे उगने लगे।
अच्छा, और तीसरा?
तीसरा शाप अध्याय 4 में केन पर था जब उसने अपने भाई हाबेल की हत्या की। चौथा संदर्भ अध्याय 8 में मिलता है जब जल प्रलय के बाद ईश्वर कहते हैं कि वो फिर कभी जमीन को शाप नहीं देंगे। और पांचवा शाप अध्याय 9 में नूह के बेटे हाम के वंशज कनान पर था।
ओ वाओ,
तो कुल मिलाकर पहले 11 अध्यायों में मानव जाति और सृष्टि पर 5 शाप मंडरा रहे थे।
ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला है।
तो पहले 11 अध्यायों में इंसानियत पर लगे 5 शाप, और फिर अध्याय 12 में जैसे ही फोकस इब्राहिम पर आता है उनके लिए ठीक 5 आशीर्वाद। ये तो पूरी तरह से एक एंटीडोट या जहर मार की तरह है। बिल्कुल, जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन 5 आशीर्वादों को एक एक करके उन 5 शापों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया हो।
ठीक उनके मुकाबले में।
यही इसका सबसे शक्तिशाली और कॉस्मिक संदेश है। इब्राहिम केवल एक व्यक्ति नहीं है जिन्हें एक जमीन का टुकड़ा और बहुत सी गाय बकरियां देकर अमीर बनाया जा रहा है। इब्राहिम वो व्हीकल है जिसके माध्यम से ईश्वर पूरी दुनिया की जातियों के लिए उस शाप को उलटकर आशीर्वाद में बदलने का महाअभियान शुरू कर रहे हैं।
तो मानव जाति का जो पतन हुआ था, जो शाप दुनिया में आ गए थे, अब उन 5 शापों की सीधी काट इन 5 आशीर्वादों के जरिए प्रस्तुत की जा रही है।
हाँ, अध्याय 12 का अंत कहता है, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। उनका परिवार दुनिया के लिए एक चैनल की तरह था जिसके जरिए वो आशीर्वाद पूरी मानवता तक पहुंचना था।
और जब हम उस वाइड एंगल कैमरा से जूम इन करके इस एक परिवार के लिविंग रूम में देखते हैं तो समझ आता है कि ये परिवार सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं चुना गया था।
बिल्कुल नहीं, उनका चुना जाना एक बहुत बड़े उद्देश्य का हिस्सा था।
और जैसा कि हम इस गहरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही गहरा पॉइंट जो डॉक्टर मैथ्यूज ने बताया वो सच में दिमाग में गूंजता है। हमने वादों की बात की, जमीन, वारिस, आशीर्वाद, लेकिन सच्चाई ये है कि इब्राहिम को अपने जीवन काल में इन वादों की पूरी भौतिक पूर्ति कभी नहीं मिली।
हाँ, उन्होंने उन वादों को मुकम्मल होते नहीं देखा।
वो कभी उस कनान देश का राजा नहीं बने, वो हमेशा टेंट्स में रहने वाले एक परदेशी ही रहे।
और यही वो आंशिक पूर्ति का सिद्धांत है जिसके बारे में हमने बात की थी। इब्राहिम को वो जमीन पूरी तरह नहीं मिली, उनके जीवन में उनका परिवार कोई विशाल राष्ट्र नहीं बन पाया, फिर भी उनका विश्वास अडिग रहा,
क्योंकि वो जानते थे कि पायलट भरोसेमंद है।
बिल्कुल, हिब्रूज 11 हमें बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो केवल एक भौतिक जमीन के टुकड़े की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो उस शहर की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसकी नींव और जिसका निर्माता स्वयं ईश्वर है। उनकी नजर उस तत्कालिक वर्तमान से आगे अनंत काल पर टिकी थी।
तो जो लोग आज ये सब सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है? यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और विश्वास केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को दिमाग में रखना नहीं है।
हाँ, ये एक्शन लेने के बारे में है।
बिल्कुल, ये अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर कदम उठाना है, ठीक उस हवाई जहाज में बैठने वाले यात्री की तरह। भले ही हमें हमारी अंतिम मंजिल पूरी तरह से दिखाई ना दे रही हो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारा पायलट भरोसेमंद है तो हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।
इब्राहिम ने भी यही किया। उन्होंने वर्तमान के आराम और विरासत की सुरक्षा को छोड़कर एक अनदेखे भविष्य के लिए ईश्वर पर दाम लगा दिया। इब्राहिम का जीवन सिर्फ एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, संघर्ष और आध्यात्मिक विकास का एक गहरा अध्ययन है।
एकदम सही। यह मैं चैलेंज करता है कि क्या हम अपने कंफर्ट जोन या अपनी कुर्बानी से बाहर निकलने को तैयार हैं, खासकर तब जब रास्ता साफ ना हो। और इसी विचार के साथ एक आखिरी सवाल है जिस पर हम सब गौर कर सकते हैं।
वो क्या है?
आज हमने देखा कि इब्राहिम की जो बाहरी भौगोलिक यात्रा थी, ऊर से हारान, मिस्र और कनान, वो वास्तव में उनके आंतरिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण का एक नक्शा थी। तो जरा सोचिए, हमारे अपने मॉडर्न जीवन में जब हमें अचानक स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, या करियर में कोई अनचाहा बदलाव आता है,
या फिर हम किसी अनजान और मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं,
हाँ, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ एक परेशानी या दुर्भाग्य मान बैठते हैं, क्या वो परिस्थितियां भी हमारे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड्स हो सकती हैं?
ये सच में एक बहुत ही गहरा पॉइंट है।
क्या वो हमारे खुद के उदाहरण और हैरान हो सकते हैं जो हमारे चरित्र को गढ़ रहे हैं और हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? उस वाइड एंगल कैमरा की तरह शायद हमें भी अपनी जिंदगी की परेशानियों को थोड़ा जूम आउट करके देखने की जरूरत है। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोजते रहिए, सीखते रहिए और अगली बार तक के लिए विदा।